दिसंबर 2020 की प्रहरी दुर्ग। अध्ययन लेख 49। इस लेख का अध्ययन 1 से 7 फरवरी के दौरान किया जाएगा। विषय: जिनकी मौत हो गई है वो जरूर जिंदा होंगे। ये लेख प्रेषितों 24 के 15 पर आधारित है, जहां लिखा है, मैं परमेश्वर से ये आशा रखता हूं कि मरे हुओं को जिंदा किया जाएगा। गीत 151, वो उन्हें पुकारेगा। लेख की एक झलक।
पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में खास तौर से इस शिक्षा के बारे में बताया गया है कि मरे हुओं को जिंदा किया जाएगा।
हम क्यों विश्वास कर सकते हैं कि जिनकी मौत हो गई है उन्हें जिंदा किया जाएगा? हम क्यों यकीन रख सकते हैं कि यीशु को सच में जिंदा किया गया था? इस लेख में इस तरह के कुछ अहम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। पैराग्राफ 1 और 2। सवाल: मसीहों के पास कौन सी अनोखी आशा है? लोग जिंदगी में कई चीजों की आशा रखते हैं। कोई चाहता है कि उसे अच्छा जीवन साथी मिले, तो किसी का अरमान होता है कि उनके बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बने, और अगर किसी को गंभीर बीमारी है तो वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम मसीह भी इन बातों की आशा रखते हैं, मगर इसके अलावा हम ये आशा भी रखते हैं कि हम नई दुनिया में हमेशा हमेशा तक जिएंगे, और हमारे अपने जो नहीं रहे वो जिंदा हो जाएंगे, और वो भी हमारे साथ हमेशा हमेशा तक जिएंगे। प्रेषित पौलुस ने कहा था, मैं परमेश्वर से ये आशा रखता हूं कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों को मरे हुओं में से जिंदा किया जाएगा। प्रेषितों 24:15।
पौलुस के जमाने से बहुत समय पहले कुलपिता अय्यूब ने भी ये बात कही थी
कि जिनकी मौत हो गई है उन्हें जिंदा किया जाएगा।
उसे पूरा यकीन था कि अगर उसकी मौत हो गई तो परमेश्वर उसे याद रखेगा और फिर से जिंदा कर देगा।
पैराग्राफ 3। सवाल: पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पर गौर करने से हमें क्या फायदा होगा? मरे हुए जिंदा होंगे, ये शिक्षा बाइबल की बुनियादी शिक्षाओं में से एक है। इब्रानियों 6:1-2। इस शिक्षा के बारे में पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15 में बहुत सी बातें समझाई। उन्हें पढ़कर पहली सदी के मसीहों का विश्वास मजबूत हुआ होगा। शायद आप भी इस शिक्षा को बरसों से मानते होंगे, फिर भी पहला कुरिन्थियों 15 में लिखी बातों से आपका विश्वास और मजबूत होगा। पैराग्राफ 4। सवाल: हम क्यों यकीन रख सकते हैं कि हमारे अपने जिंदा होंगे? जब यीशु की मौत हुई तो उसके बाद उसे जिंदा किया गया था। इससे हमें भरोसा होता है कि हमारे जो अपने अब नहीं रहे वो भी एक दिन जिंदा हो जाएंगे। कुरिन्थ के मसीहों को जब पौलुस ने शुरू में खुशखबरी सुनाई थी तो उसने ये भी बताया कि यीशु को जिंदा किया गया है।
उसने ये तक कहा कि अगर एक मसीह इस बात को नहीं मानता तो उसका विश्वास बेकार है। यीशु को वाकई जिंदा किया गया, इसलिए हम यकीन रख सकते हैं कि और लोगों को भी जिंदा किया जाएगा।
पैराग्राफ 5 और 6। सवाल क: पहला कुरिन्थियों 15 के 3 और 4 में कौन सी 3 सच्चाइयां बताई गई हैं? सवाल ख: इससे हमें किस बात का भरोसा होता है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 की शुरुआत में पौलुस ने ये 3 अहम सच्चाइयां बताई।
पहली, मसीह हमारे पापों के लिए मरा। दूसरी, उसे दफनाया गया। और तीसरी, जैसा शास्त्र में लिखा था उसे तीसरे दिन जिंदा किया गया। पहला कुरिन्थियों 15 के 3 और 4 में लिखा है, इसलिए कि जो बातें मुझे सिखाई गई थीं और जो मैंने तुम तक पहुंचाई हैं,
उनमें सबसे जरूरी ये है कि जैसा शास्त्र में लिखा है, मसीह हमारे पापों के लिए मरा और उसे दफनाया गया, और जैसा शास्त्र में लिखा था उसे तीसरे दिन जिंदा किया गया। यशाया ने बहुत पहले भविष्यवाणी की कि मसीहा को दुनिया से मिटा दिया जाएगा और उसे दुष्टों के साथ कब्र में दफनाया जाएगा। यशाया ने एक और बात कही कि मसीहा बहुतों का पाप उठा ले जाएगा। यीशु अपनी जान की फिरौती देकर हम सबके पाप उठा ले गया। यशाया 53:8-12।
तो पौलुस ने जो 3 सच्चाइयां बताई, यानी ये कि यीशु की मौत हुई, उसे दफनाया गया और जिंदा किया गया, इससे हमें किस बात का भरोसा होता है? यही कि हमें पाप और मौत से छुड़ाया जाएगा और हमारे जो अपने अब नहीं रहे उनसे हम दोबारा मिल पाएंगे। हमारी ये आशा पक्की है।
कई लोगों की गवाही। पैराग्राफ 7 और 8। सवाल: किन सबूतों से पता चलता है कि यीशु को वाकई जिंदा किया गया था? हमें इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि यीशु को वाकई जिंदा किया गया था। तभी हमें यकीन होगा कि नई दुनिया में उन लोगों को जिंदा किया जाएगा जिनकी मौत हो गई है। आइए कुछ सबूतों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यहोवा ने यीशु को वाकई में जिंदा किया था। पौलुस बताता है कि जब यीशु को जिंदा किया गया तो उसके बाद कई लोगों ने उसे देखा था और ये बात दूसरों को भी बताई थी। पौलुस ने जिन लोगों के नाम बताए उनमें सबसे पहला था कैफा यानी प्रेषित पत्रस। दूसरे चेलों ने भी बताया कि पत्रस ने यीशु को देखा था। पौलुस ने यह भी कहा कि प्रेषितों ने यीशु को देखा था। इसके बाद यीशु एक ही वक्त पर 500 से ज्यादा भाइयों के सामने प्रकट हुआ। मत्ती 28 का 16 से 20 बताता है कि शायद वो गलील में उनके सामने प्रकट हुआ था। यीशु याकूब के सामने भी प्रकट हुआ। ये याकूब यीशु का सौतेला भाई था जो पहले उसे मसीहा नहीं मानता था। उसे जिंदा देखने के बाद वो उस पर विश्वास करने लगा। गौर कीजिए कि पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम ये चिट्ठी ईस्वी सन 55 के आसपास लिखी थी। उस वक्त इनमें से कई गवाह जिंदा थे, इसलिए अगर किसी को यीशु के जिंदा होने पर शक होता तो वो इन गवाहों से बात करके खुद पता कर सकता था। पैराग्राफ 9 सवाल। प्रेषितों 9 के 3 से 5 के मुताबिक पौलुस भी कैसे इस बात का सबूत दे सका कि यीशु जिंदा हो गया था? पौलुस बताता है कि यीशु उसके सामने भी प्रकट हुआ। जब पौलुस, जो शाउल कहलाता था, दमिश्क जा रहा था तो उसने रास्ते में यीशु की आवाज सुनी। उसने एक दर्शन में यीशु को देखा जो तब तक स्वर्ग जा चुका था। प्रेषितों 9 के 3 से 5 में लिखा है, जब वो दमिश्क पहुंचने वाला था तो रास्ते में अचानक उसके चारों तरफ आकाश से रोशनी चमक उठी। तब वो जमीन पर गिर पड़ा और उसने एक आवाज सुनी जो उससे कह रही थी, शाउल शाउल, तू क्यों मुझ पर जुल्म कर रहा है? शाउल ने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिस पर तू जुल्म कर रहा है। पौलुस ने जो देखा वो भी इस बात का सबूत था कि यीशु सच में जिंदा हो गया था। पैराग्राफ 10 सवाल। जब पौलुस को यकीन हो गया कि यीशु जिंदा हो गया है तो उसने क्या किया? पौलुस ने जो देखा और बताया उस पर कुछ लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा। वो इसलिए कि पौलुस पहले मसीहियों पर जुल्म करता था, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि यीशु सच में जिंदा हो गया है तो उसने दूसरों को भी इस बारे में प्रचार किया। उसने कड़ी मेहनत की ताकि लोगों को भी इस सच्चाई पर यकीन हो जाए। उसने कई दुख झेले, दुश्मनों के हाथों मार खाई, जेल की सजा काटी, जहाज टूटने पर कई तकलीफें झेली, फिर भी वो रुका नहीं और दूर दूर तक ये सच्चाई सुनाता रहा कि यीशु की मौत हुई थी और उसे जिंदा किया गया। पौलुस को इस सच्चाई पर इतना यकीन था कि वो इसे सुनाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार था। शुरू के इन मसीहों की गवाही से आपको जरूर यकीन हो गया होगा कि यीशु को वाकई जिंदा किया गया था, और इस बात से आपका विश्वास भी मजबूत हुआ होगा कि नई दुनिया में लोग जिंदा होंगे। झूठी धारणाओं को गलत साबित किया। पैराग्राफ 11 सवाल। कुरिन्थ के कुछ मसीह गलत धारणाएं क्यों रखने लगे थे? कुरिन्थ यूनानी लोगों का शहर था। वहां के कुछ मसीह मरे हुओं के जिंदा होने के बारे में गलत धारणाएं रखते थे, और कुछ तो कहते थे कि मरे हुओं को जिंदा नहीं किया जाएगा। पहला कुरिन्थियों 15:12। शायद वो कुछ दार्शनिकों या बड़े बड़े ज्ञानियों के बातों में आ गए थे। एक बार जब पौलुस ने यूनानियों के एक और शहर एथेंस में इस बात का प्रचार किया था कि यीशु जिंदा हो गया है, तो वहां कुछ दार्शनिकों ने उसका मजाक उड़ाया था। कुरिन्थ के कुछ भाई बहन भी शायद उन दार्शनिकों की तरह सोचने लगे थे, और कुछ तो सोचते थे कि मरे हुए लोग सचमुच जिंदा नहीं होंगे, बल्कि इस शिक्षा का कुछ और ही मतलब है। उनका कहना था कि हम इंसान पापी होने की वजह से मुर्दा हालत में होते हैं, लेकिन जब हम मसीह बने तो एक तरह से हम जिंदा हो गए, क्योंकि हमारे पाप माफ कर दिए गए और हमने एक नई जिंदगी शुरू की। कारण चाहे जो भी हो, जो लोग इस शिक्षा को नहीं मान रहे थे उनका विश्वास बेकार था। अगर यहोवा ने यीशु को जिंदा नहीं किया तो इसका मतलब फिरौती की कीमत नहीं चुकाई गई और हमें पापों की माफी नहीं मिली है। जो लोग इस बात को नहीं मानते थे कि मरे हुओं को जिंदा किया जाएगा, उन्हें भविष्य के लिए कोई आशा नहीं थी। पैराग्राफ 12 सवाल। पहला पत्रस 3:18-22 के मुताबिक जिन लोगों को यीशु से पहले जिंदा किया गया था उनमें और यीशु में क्या फर्क था? पौलुस ने खुद यीशु को दर्शन में देखा था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया गया है। यीशु से पहले भी कुछ लोगों को जिंदा किया गया था, लेकिन फिर से उनकी मौत हो गई थी। मगर जब यीशु को जिंदा किया गया तो उसे एक अदृश्य शरीर दिया गया ताकि वो स्वर्ग में जी सके। यीशु से पहले किसी और को इस तरह का जीवन नहीं मिला था। वो पहला ऐसा इंसान था जो जिंदा होने के बाद स्वर्ग गया। इसीलिए पौलुस ने कहा कि जो मौत की नींद सो गए हैं उनमें वो पहला फल है। पहला कुरिन्थियों 15:20। पहला पत्रस 3:18 में लिखा है, यहां तक कि मसीह भी हमारे पापों के लिए एक ही बार हमेशा के लिए मरा। वो नेक होते हुए भी पापियों के लिए मरा ताकि तुम्हें परमेश्वर के पास ले जाए। जब उसे मार डाला गया तब उसका इंसानी शरीर था, मगर जब जिंदा किया गया तो
तो उसे अदृश्य शरीर दिया गया। और आयत 22 में लिखा है, यीशु अब स्वर्ग लौट गया है और परमेश्वर के दाईं तरफ है, और स्वर्गदूत और अधिकार और ताकतें उसके अधीन की गई हैं। वो जिंदा किए जाएंगे। पैराग्राफ 13। सवाल, पौलुस ने आदम और यीशु में क्या फर्क बताया? पौलुस ने बताया कि एक इंसान की मौत की वजह से करोड़ों लोगों को जीवन मिलता है। पौलुस कुछ दलीलें देकर समझाता है कि ये कैसे हो सकता है। वो बताता है कि आदम की वजह से इंसानों का क्या नुकसान हुआ और यीशु के बलिदान की वजह से उन्हें क्या आशीषें मिल सकती हैं। आदम के बारे में पौलुस ने लिखा, एक इंसान के जरिए मौत आई। आदम के पाप की वजह से उस पर और उसकी संतानों पर मौत आई। आज भी इंसान इसी वजह से मर जाते हैं, लेकिन जब यहोवा ने यीशु को जिंदा किया तो इंसानों को एक अनोखी आशा मिली। इसलिए पौलुस ने कहा कि एक इंसान के जरिए ही मरे हुए जिंदा किए जाएंगे। उसने ये दलील दी कि ठीक जैसे आदम की वजह से सभी मर रहे हैं, वैसे ही मसीह की बदौलत सभी जिंदा किए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 21 और 22। पैराग्राफ 14। सवाल, क्या आदम को जिंदा किया जाएगा? समझाइए। पौलुस ने कहा कि आदम की वजह से सभी मर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आदम की वजह से सभी इंसान पापी और अपरिपूर्ण हो गए, इसलिए वो सब मर जाते हैं। आदम एक परिपूर्ण इंसान था और उसने जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी, इसलिए उसे मसीह की फिरौती से फायदा नहीं मिलेगा, उसे जिंदा नहीं किया जाएगा। आदम का जो हाल हुआ वही उनका भी होगा जो जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं। भविष्य में जब इंसान का बेटा न्याय करेगा तो वो उन्हें बकरी समान लोग कहेगा और उनका हमेशा के लिए नाश कर देगा। आदम की तरह उन्हें भी जिंदा नहीं किया जाएगा। मत्ती 25 का 31 से 33 और 46। पैराग्राफ 15। सवाल, जब पौलुस ने कहा कि सभी जिंदा किए जाएंगे तो वो क्या कहना चाह रहा था? पौलुस ने यह भी कहा, मसीह की बदौलत सभी जिंदा किए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 22। ध्यान दीजिए कि पौलुस ने ये चिट्ठी कुरिन्थ के अभिषिक्त मसीहों को लिखी थी, जिन्हें स्वर्ग में जीवन पाने की आशा थी। जब उसने कहा कि सभी जिंदा किए जाएंगे तो वो ये कह रहा था कि अभिषिक्त मसीह भी जिंदा किए जाएंगे। उन्हें मसीह यीशु के चेले होने के नाते पवित्र किया गया था और पवित्र जन होने के लिए बुलाया गया था। पौलुस ने अपनी चिट्ठी में बताया कि मसीह के कुछ चेले मौत की नींद सो गए हैं। पहला कुरिन्थियों 15 का 18। उसने रोमियो के नाम चिट्ठी में लिखा कि जो लोग यीशु के जैसी मौत मरकर उसके साथ एक हुए हैं, वो उसकी तरह जिंदा होकर भी उसके साथ एक होंगे। रोमियो 6 का 3 से 5। जैसे यीशु को अदृश्य शरीर देकर स्वर्ग में जिंदा किया गया था, उसी तरह सभी अभिषिक्त जनों को अदृश्य शरीर देकर स्वर्ग में जीवन दिया जाएगा। पैराग्राफ 16। सवाल, पौलुस ने यीशु को पहला फल क्यों कहा? पौलुस ने लिखा, जो मौत की नींद सो गए हैं उनमें मसीह पहला फल है। पौलुस ने मसीह को पहला फल क्यों कहा? याद कीजिए, जब यीशु से पहले लाजर और दूसरे लोगों को जिंदा किया गया था तो उन्हें धरती पर ही जीवन दिया गया था, मगर यीशु वो पहला इंसान था जिसे जिंदा करके अदृश्य शरीर दिया गया और जिसने स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी पाई। यीशु फसल की कटाई के बाद मिलने वाले उस पहले फल की तरह था जिसे इसराइली परमेश्वर को अर्पित करते थे। यीशु को पहला फल कहने का ये मतलब भी है कि कुछ और लोगों को भी जिंदा करके स्वर्ग में जीवन दिया जाता। समय आने पर प्रेषितों और दूसरे अभिषिक चेलों को भी यीशु की तरह स्वर्ग में जीवन मिलता। पैराग्राफ 15 और 16 से संबंधित तस्वीर के बारे में, स्वर्ग जाने वालों में यीशु सबसे पहला था। बाद में उसके कुछ चेले भी स्वर्ग जाते, जैसे थोमा, याकूब, लूदिया, यूहन्ना, मरियम और पौलुस। चित्र शीर्षक, स्वर्ग में जीवन पाने वालों में यीशु सबसे पहला था। पैराग्राफ 17। सवाल, प्रेषितों और दूसरे अभिषिक्त मसीहों को कब स्वर्ग में अपना इनाम मिला? प्रेषितों और दूसरे अभिषिक्त मसीहों को कब स्वर्ग में जीवन दिया गया? जब पौलुस ने कुरिन्थ के मसीहों को चिट्ठी लिखी थी तब तक ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि पौलुस ने चिट्ठी में बताया कि ऐसा भविष्य में होगा। उसने कहा, हर कोई एक सही क्रम में, पहले मसीह जो पहला फल है, इसके बाद वो जो मसीह के हैं उसकी मौजूदगी के दौरान जिंदा किए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 23। आज हम मसीह की मौजूदगी के समय में जी रहे हैं। प्रेषितों और दूसरे मसीहों को उनकी मौत के सदियों बाद, यानी मसीह की मौजूदगी के दौरान जिंदा किया गया। तभी वो यीशु की तरह जिंदा होकर उसके साथ एक हुए और उन्हें स्वर्ग में अपना इनाम मिला। आपकी आशा जरूर पूरी होगी। पैराग्राफ 18, सवाल क, हम क्यों कह सकते हैं कि स्वर्ग में जीने की आशा रखने वालों के अलावा और भी लोगों को जिंदा किया जाएगा। सवाल ख, पहला कुरिन्थियों 15 के 24 से 26 के मुताबिक स्वर्ग में क्या क्या होगा। मगर उन सभी वफादार मसीहों का क्या होगा जिन्हें मसीह के साथ स्वर्ग में जीने की आशा नहीं है? अगर उनकी मौत हो गई तो उन्हें भी जिंदा किया जाएगा। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बाइबल बताती है कि पौलुस और दूसरे अभिषिक्त मसीहों को पहले जिंदा किया जाएगा, फिलिप्पियों 3:11। अगर इस समूह के लोगों को पहले जिंदा किया जाएगा तो इसका मतलब है कि कुछ और लोग भी हैं जिन्हें बाद में जिंदा किया जाएगा। अय्यूब भी मानता था कि अगर उसकी मौत हो गई तो उसे भविष्य में जिंदा किया जाएगा। पहला कुरिन्थियों 15 के 24 से 26 से पता चलता है कि जब यीशु सभी सरकारों, अधिकारों और ताकतों को मिटाएगा तब उसके साथ अभिषिक्त मसीह भी होंगे। यहां लिखा है, फिर अंत में जब वो सभी सरकारों, अधिकारों और ताकतों को मिटा चुका होगा तब वो अपने परमेश्वर और पिता के हाथ में राज सौंप देगा। इसलिए कि उसका तब तक राजा बनकर राज करना जरूरी है जब तक कि परमेश्वर सारे दुश्मनों को उसके पैरों तले नहीं कर देता। सबसे आखिरी दुश्मन जो मिटा दिया जाएगा वो है मौत। उस वक्त आखिरी दुश्मन मौत को भी मिटा दिया जाएगा। ये बात तो साफ है कि जिन्हें स्वर्ग में जीवन दिया जाएगा वो आदम के पाप की वजह से कभी नहीं मरेंगे। पैराग्राफ 19, सवाल, जिन्हें स्वर्ग जाने की आशा नहीं है वो किस बात का यकीन रख सकते हैं? जिन लोगों को स्वर्ग जाने की आशा नहीं है वो इस बात का यकीन रख सकते हैं कि अगर उनकी मौत हो गई तो नई दुनिया में उन्हें धरती पर जिंदा किया जाएगा। हम ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? पौलुस ने कहा था, मैं आशा रखता हूं कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों को मरे हुओं में से जिंदा किया जाएगा, प्रेषितों 24:15। गौर कीजिए कि पौलुस ने कहा कि बुरे लोगों को भी जिंदा किया जाएगा। बुरे लोग तो स्वर्ग नहीं जा सकते, तो जाहिर सी बात है कि वो धरती पर ही जिंदा होंगे। इससे साबित होता है कि जिन लोगों को स्वर्ग जाने की आशा नहीं दी गई है उन्हें धरती पर जिंदा किया जाएगा। पैराग्राफ 20, सवाल, आपको क्यों पक्का यकीन है कि जिनकी मौत हो गई है उन्हें जिंदा किया जाएगा? इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को मरे हुओं में से जिंदा किया जाएगा। जिन्हें धरती पर जिंदा किया जाएगा उनके पास हमेशा जीने की आशा होगी। परमेश्वर का ये वादा जरूर पूरा होगा। जब आपको उनकी याद आती है जो अब नहीं रहे तो ये आशा आपको दिलासा देगी। जब मसीह और उसके साथी 1000 साल तक राज करेंगे तो उस दौरान आपके अपनों को जिंदा किया जाएगा, प्रकाशित वाक्य 20:6। अगर मसीह का राज शुरू होने से पहले आपकी मौत हो गई तो आपको भी जिंदा किया जाएगा। ये आशा हमें निराश नहीं होने देती। रोमियो 5:5, इस आशा से आपको हिम्मत मिलती है और आप यहोवा की सेवा खुशी से कर पाते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 से हम और भी बातें सीखते हैं। इस बारे में हम अगले लेख में चर्चा करेंगे। पैराग्राफ 20 से संबंधित तस्वीर के बारे में, एक भाई ने अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया है जिसके साथ मिलकर उसने बरसों सेवा की थी। उसे पूरा भरोसा है कि वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। भाई यहोवा की सेवा वफादारी से कर रहा है। चित्र शीर्षक, हमें पूरा यकीन है कि जिनकी मौत हो गई है वो जिंदा होंगे, इसलिए हम एक खुशहाल जिंदगी की आशा रखते हैं। आपका जवाब क्या होगा? आपको क्यों यकीन है कि यीशु को जिंदा किया गया था? यीशु को जिंदा किया गया था, इससे हमें किस बात का भरोसा होता है? पहला कुरिन्थियों 15 से कैसे आपका विश्वास मजबूत होता है कि जिनकी मौत हो गई है उन्हें जिंदा किया जाएगा? गीत 147, हमेशा की जिंदगी का वादा। लेख समाप्त।